ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੋ ਵੱਖਰ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸੋਦਾ ਹੈ। ਸੋਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਨਿਮੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਜਾਂ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਛਿਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਦਾ। ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਤਮ ਵੱਖਰ ਇਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਲਈ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੂਖਮ ਔਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਵਸ਼ਕ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਚੇ ਰਤਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਮਤ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਇਹ ਜਿਸ ਵੀ ਵਸਤੂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਅਗਰਸਰ ਨੇ। हर पल हर घड़ी एकत्र कीती गई वस्तु और संबंध खत्म हो रहा है। तो जीवात्मा नूं जो उपदेश संतां ने दिता है ऐसा रतन ऐसा व्यापार करन वास्ते, व्यापारी किसनूं कहा जाता है? उत्तम व्यापारी, कामयाब व्यापारी, जिहड़ा जितनी पूंजी लगावे और उसके बदले दे विच जिस वस्तु नूं वो खरीद करके लियावे, कमा करके लियावे, उसका मुल खर्च कीती गई पूंजी तो वध के होवे, तां ही असीं इस जगत दे विच उस व्यापारी नूं कामयाब कहिंदे हां। हुण जीवात्मा ने जड़े वखर कट्ठे कीते हन, इन्हां दा विचार करना है। क्या जड़ी पूंजी असीं खर्च कीती है उसके बदले दे विच कमाया गया व्यापार, एकत्र कीते गए संबंध और वस्तुआं, क्या खर्च गई कीती गई पूंजी तो वध अर्थ रखते हैं? ये आज का मजबूर है। सतगुरु इसनूं स्पष्ट करनगे कि ये जीवात्मा परम दे अधीन सिर्फ घाटे का सौदा कर रही है, और इस तरीके का किया गया वखर इस जीवात्मा नूं उस वक्त, जिस वक्त इसकी पूंजी खत्म हो जाती है, जुआ खेडिया जाता है, जब तक दाव लगाने वाले की जेब दे विच पैसा है, जुआ खेडाने वाला उसके उपर निहाल है, क्योंकि उसनू पता है इस दे बाद पूंजी है और वो पूंजी उसने उदे कोलो खोनी है और उसकी बड़ी आप भगत करता है। पर जो जो दा हारदा जाता है, पूंजी उदे हत्थों निकलती जाती है, त्यों त्यों जुआ खेडाने वाले की नज़र जड़ी है वह सख्त होती जाती है, और जिसले वह देखता है इसकी सारी पूंजी खत्म हो चुकी है, उसनू वह धक्के मार के बाहर कढ़वा देता है। इस जगत दे विच पिछले युगों के असी नज़र मार करके देखिए, महाभारत का जो आधार सी जुए के अधीन खेडण वालियां नू किस मुकाम ते पहुँचा दिता, कैसा सौदा उन्होंने इकट्ठा किया दोनों पार्टियां ने, एक दी गल नहीं है, दोनों की तरफ विचार करके देख लो। एक ने तो अपनी स्त्री नू ही दाव ते लगाता, एक पासे कहा जाता है स्त्री तन है, इज्जत है, आबरू है, आबरू ही दाते लगाती, खटना की सी, उसका हसर किसी को भुलिया नहीं है। दूसरी पार्टी नू वेख लो, जितण दे बाद भी लोभ ने नहीं छड़िया, नतीजा 100 पुत्र सन, कितना वड्डा कुल सी, कोई चिराग जगाने वाला भी नहीं बचिया, सारा कुल ही खत्म हो गया। हारन वाला तो तबाह होया ही, जितन वाला भी तबाह हो गया। जीवात्मा जिस वखर नू कर रही है, एक कमाई जड़ी कर रही है, ये सारा का सारा जुआ खेड रही है, ये सारे दा लगा रही है। एक हारिया जुआरी चोरी भी करता है, अपनी माँ दे भैन दे गहने भी चुके लै जाता है, पिता दे बोझे चो पर्स भी लै जाता है, क्योंकि उन्हें जुआ खेडन की आदत है, वो जा करके हार आता है, उसनू इज्जत आबरू किसी चीज़ का ख्याल नहीं है। उस तरीके दे नाल ए जीवात्मा इस वक्त अपने कुल नू भुल बैठी है, इसनू सोझी नहीं ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਜਾਤ ਦੀ ਕਿਸ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ, ਜੁਆਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੁਆ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਕਤ ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੌਲਤ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਸਤਨਾਮ, ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਣਜ ਕਰਨੇ ਸੀ ਇਸਨੇ, ਰਤਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਤਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਇੱਕੋ ਤੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧੂਰੇ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਤਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਕੈਸਾ ਸੌਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੂਆ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੂਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦਾ। ਪੂੰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ 'ਤੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਉਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜੁਆਰੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਦਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। ਜੂਆ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਭੋਗੀ ਜੂਨਾ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਇਹ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਦੀ, ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ उस आखिरी कड़ी च ये वस्तुआं और संबंध काम नहीं आदिया, यानी कीता गया वखर घाटे का सी, जीवात्मा नू घाटा पै गया। मरण की गल करनी है, ये सारिया वस्तुआं और संबंध जींदे जी साथ छड्ड दिंदे ने। जो काम विच घाटा पै जावे, सुख दे साधन दूर हो जान, उसले घर वेले ही ताने मारने शुरू कर देंगे। बाहर दे संबंधा की गल करनी है, वह तो जब तक साढ़े को साधन है साढ़े साथ ने, वस्तुआं जिन्हां नू भोगण वास्ते असी एकत्र कर रहे हाँ, जो डॉक्टर जवाब दे दिंदा है भाई शुगर है, कुछ नहीं खाना, कच्ची सलाद खानी है, 5-10 किलोमीटर रोज पैदल चलना है, उस वक्त होश ठिकाने आ जाते। पर मन नाल लगा है, मनमत है, बेशरम, फिर भी असी यही चीजा कठिया करते हैं, यही सौदा कमाण की कोशिश करते हैं, जिन्हों असी जींदे जी भोग नहीं सके और मरण के बाद नाल नहीं जाती। तो ये जितना भी वखर ये जीवात्मा मनमत विच कमा रही है इस जगत दे विच, ये घाटे का सौदा है। रूहानियत का जो मजमून है, संतां ने इतनी बाणी दिती है, ग्रंथ दे ग्रंथ बने हुए हैं, सब दे विच इक्को ही भाव है, मनुखे जन्म की कीमत का, और इस जन्म दे विच आकर के जीवात्मा द्वारा कीता गया वखर, वो कमाई, वो पूंजी, वो रतन, वाणी दे विच इसनू रतन किया गया, अंधा हो करके रतना परखण जाई। अंधा जीव अगर रतन दी परख करना चाहे इस लोक दे विच, उसकी परख नहीं कर सकता, घाटे का सौदा करेगा। यही हालत इस जीवात्मा की इस वक्त मौजूद है, अंधी है, बैरी है, ये जड़ियाँ अखा साढ़े मिलिया हैं, ये शरीर दिया हैं, रस्ता देखने वास्ते, किरिया करन वास्ते, इस संसार सागर इस जाल दे विचों निकलन वास्ते, और असी इन्हां दा उपयोग किस तरीके नाल कर रहे हैं, इस जीवात्मा नू संसार सागर दे विच फसाण वास्ते। हर पल हर घड़ी ये लगाया गया दाव इस जीवात्मा नू बंधन दे रूप विच पक्का कर रहा है। इस तो असी विचार करना है, अंधा कदे भी इस रतन नू नहीं कमा सकता। पारखी, अगर पारखी सानू मिल जावे जिस दे कोल भेद है रतन दा, जिस नू गुरु साहबान ने रतन किया है, तां ही ओ सौदा कमाया जा सकता है। इसकी मंडी कित्थे है, ये व्यापार कित्थे कीता जांदा है, किथे इस जगत दे विच बाहर भरमन की जरूरत नहीं है। घर की गल की है, हुण घर कहड़ा सी, ये विचार करना है। इस जीवात्मा ने इस रतन नू इस घर दे विच इस देह दे विच नौ द्वारे खाली करके दसवें द्वार पहुंच करके ये वखर नू कमाना है। रतन जड़ है, और जिस सौदे की गल की जा रही है, वह परम चेतन का एक महान गुण है, अखुट भंडार है, जिस जीवात्मा ने इस रतन नु कमा लिया अपने घर दे विच जा करके उसका किया गया वणज कामयाब है, उसकी की गई वखर उपर वो पारखी आप कुर्बान है। पारखी कौन है जो इस रतन की दात नू इस जीवात्मा की झोली दे विच तकसीम कर सकता है? उस पारखी नू इस जगत दे विच सतगुरु के नाम तो पुकारिया जाता। हुण सतगुरु जो ने जिसनू ये वखर देंदे हन, जिसनू ये रतन की दात मिलती है, ये बड़ी उच्ची और सुची दात है। जदों राक्षस और देवत्यां दा आपस दे विच मेल कराया गया अमृत नू प्राप्त करन वास्ते, वैसे दोनों ही ताकतां एक दूसरे दियां विरोधी हन, पर अमृत नू प्राप्त करन वास्ते दोनों ही गुण परमात्मा दे एकत्र हो गए हैं। अमृत नू प्राप्त करना है, उस तो पहला जितनिया भी रिद्धि सिद्धियां दे संबंधित ताकतां सन स्वर्ग और वैकुंठां दे विच, उन्हां नू राक्षस जो सन लुट करके लै गए सन, पर वह सारिया ही ताकतां जड़ियां सन उन्हां दे कोल नहीं रहियां, समुंदर दे विच गिर गईयां सन। समुंदर दे विच गिरन दी की वजह सी? उन्हां ताकतां दी एक मर्यादा है, मर्यादा दे अधीन ही हो रहिंदियां ने, चाहे वह काम देनू है, चाहे वह कल प्रविक्ष है या कालदंड है, चाहे ब्रह्मदंड है या ऐसिया ऐसिया दित्तियां गईयां उपलब्धियां देवत्यां नू जिहड़ियां सिर्फ और सिर्फ पुन कमा करके जप तप संयम दे नाल यग द्वारा प्राप्त कीतियां जा सकदियां सन, ये उन्हां दी मर्यादा सी। इस मर्यादा दे विच पूरे उतर करके ही ये ताकतां देवत्यां नू वर स्वरूप प्राप्त होंदियां सन, पर राक्षस जदों उन्हां नू लुट करके लै गए, पर राक्षसां दे कोल ये मर्यादा नहीं सी। हुण जद मर्यादा नहीं है तो वस्तु आन दे बाद भी उन्हां दे कोल नहीं टिकी, समुंदर दे विच गिर गईयां। इस तो स्पष्ट हो जांदा है कि अगर एक ब्रह्म तक दी ताकत रिद्धि सिद्धि बेशक वह अधूरा अर्थ रखती है, बेशक इस जगत दे विच बहुत ही चमत्कार ला करके प्रकट होती है, पर वह ताकत भी जो है सिर्फ और सिर्फ मर्यादा दे अधीन टिकती है। मर्यादा दे बाहर ना वो टिकी है ना टिकेगी। रावण दे कोल कोई घट ताकतां नहीं सन, सूरज देवता का छतर सी, चंद्र देवता चोर चलते सन, पवन देवता घर दे विच झाड़ू लगांदे सन, अग्नि देवता रसोईये का काम करते सन, और काल नू उसने पावे नाल बंद रखिया सी, यम लोक नू जित करके आया सी, इंद्र नू उहदे पुत्र ने बंधन विच लै लिया सी, ये सारियां ताकतां उहदे कोल मौजूद सन, पर कद तकन रहियां जब तक उसकी मर्यादा और कीती गई कमाई मौजूद सी। जब उसने अपनी कमाई लुटानी शुरू कर दिती, दिन रात अभिमान दे विच गर्क होंदा रहा, यानी कि जीवात्मा जुआ खेडदी रही, दा हारदी रही। अगर कमाई कीती गई है, जितनी वड्डी कमाई है उतना ही वड्डा टाइम लगता है उसनू गवाण दे विच। पर हर पल हर घड़ी एक कमाई यानी कि पूंजी खर्च करने के बाद कुछ ना कुछ जरूर हासिल होती है, प्लस के रूप में या माइनस के रूप में। यह फैसला जीवात्मा का अपना है। रावण नू किसी ने यह नहीं सी कि होशियार नहीं सी कीता, उसके भरा ने बड़ा समझाया सी, होर भी बहुत सारिया ताकत ने उसनू स्पष्ट किया सी, पर वो अपनी इस तरीके की कमाई गई दौलत नू अभिमान दे विच लैंदा सी और जुआ खेडन तो हटता नहीं सी। अखीर वो घड़ी भी आ गई जिसले सारी पूंजी खत्म हो गई। जिस वक्त सारी पूंजी खत्म हो गई तो जिन्हां रिधियां सिद्धियां ताकतां दा उसनू अभिमान सी वो फिर काम नहीं सी कर सकदियां। और रिधियां सिद्धियां की यह ताकत इतनी प्रबल सी कि जिसले इंद्र ने भगवान विष्णु दे अगे फरियाद की कि इस निशाचर नू हुण तुसी आप ही अवतार लै करके खत्म करो, तो भगवान विष्णु ने भी हाथ खड़े कर दिते, इको ही उपदेश दिता। इस वक्त उसके पास जड़ी ताकत है वह ब्रह्म की दिती हुई है, उसनू वर मिलिया होया है लंबी उम्र का। जब तक इन घड़ियां खत्म नहीं होणगियां तद तक मैं इस दिते गए वर की अवेलना नहीं कर सकता। बेशक ताकत है मारन की, पर ब्रह्म के हुक्म नू असी अवेलना नहीं कर सकते। तो उस घड़ी का इंतजार भगवान विष्णु नू भी करना पिया, जिस घड़ी दे विच उसने अपनी सारी कमाई जड़ी सी लुटा दित्ती। और उस तो बाद की असर होया, सिर्फ एक बाण दे विच ही उसका सिर जो है अलग कर दिता गया। कितने हजार साल उसने तीनों लोगों नू जित करके इस पृथ्वी के उपर हाहाकार मचाया। हुण जब इतनी वड्डी ताकत और दौलत लैण दे बाद अगर जीवात्मा का अंत जुआ खेडन दे बाद इस तरीके का हो सकता है, तो साडा और तुहाडा कैसा असर होएगा। अजे तक असी ब्रह्म नू ही प्राप्त नहीं किया। सवेरे गुरु साहबां ने वचन किए हैं कि पार ब्रह्म की असी की गल करनी है, असी तो ब्रह्म नू भी हासिल नहीं कर सके। ब्रह्म नू हासिल करना यह जीवात्मा का उदम है, यह जीवात्मा का वखर है। जब तक जीवात्मा इस वखर नू नहीं कमांदी, पार ब्रह्म की गल कोरी कल्पना है। नौ द्वारियां चो निकलना, दसवें द्वार इस रतन नू प्राप्त करना, यह जीवात्मा का अपना कमाया गया वखर है। दया मेहर के मतलब भी स्पष्ट किया गया है। इस जगत दे विच रोशनी नू लै लो, हवा नू लै लो, पानी नू लै लो, ये प्रकृति की किसी भी वस्तु नू लै लो, अखुट भंडार के रूप दे विच इस जीवात्मा नू इस जगत दे विच इहदी झोलियां ही तकसीम किए गए ने। इस भंडार चो कितनी भी दौलत लै लवे इस नू मना नहीं किया जाता, पर उपदेश इको ही दिता जाता है। ये सारी दौलत लैण दे बाद तू जड़ा वखर कमाना है, इस मनुखे जन्म नू सार्थक करना है, उस रतन नू कमाना है, उस रतन नू हासिल करना है जड़ा इस घर दे अंदर मौजूद है। इस रतन नू होर किसी भी जन्म दे विच हासिल नहीं किया जा सकता, सिर्फ भुगतान है अच्छी कमाई या भैड़ी कमाई का। और की गई कमाई कदी तब्दील नहीं होंगी। सतगुरु का मजमून भी बिल्कुल स्पष्ट है, जो कमाई असी करांगे जैसा वखर लै करके ये जीवात्मा इस जगत तो कूच करेगी या कमाई कर दिया होया सतगुरु की कौल पहुंची है, उसकी की गई कमाई की कोई तब्दीली नहीं है, उस दे विच कोई भिल भेद नहीं है। वो कमाई इस जीवात्मा नू खुद ही खर्च करनी पैंदी है, भावे भुगतान के रूप में भावे सूक्ष्म या कारण लोगों के उत्तम भोगी जूना लै करके भुगतान के रूप में। इस दे विच कोई बदलाव नहीं किया जाता, ना सतगुरु करते ने, सतगुरु कर्मा की मेख नू मिटा देंदे, इसका असी गलत अर्थ लैंदे हां। कर्मा की रेख नू किस तरह मिटाते हैं, जिस तरह जीवात्मा सोच रही है इस तरीके दे नाल नहीं। सतगुरु कदे भी प्रबध दे विच दखल नहीं देंदे। कितने भी आंसू काढ लो, ये आंसू जीवात्मा नू खुद ही पूंजने पैणगे, किसी ने नहीं पूंजने, चाहे बीमारी दे रूप विच हन, चाहे संबंध दे रूप विच हन, चाहे किसी वस्तु दे रूप विच हन। ये कीती गई कमाई है पिछले जन्मां दी, खेड़िया गया जुआ है पिछले जन्मां दा, जिसका अंत यह है कि यह जीवात्मा जन्म और मरण के गेड़ दे विच है। और एक मौका इसनू दिता गया अकाल पुरख की तरफों इस सच्चे वखर नू प्राप्त करन वास्ते। अनगिनत जन्मां दा जुआ खेडन दी इसका जो भ्रम सी, इसने फिर जुआ खेड़िया। यानी कि सतगुरां ने भ्रम इस प्रबध दे विच मेख नहीं लगानी, जो कीता वह भुगतान करना पेगा। उस दे बाद रह जांदे ने संचित, कट्ठे कीते गए वह कर्म जिहड़े जुआ खेड खेड के इस जीवात्मा ने मनुखे जन्म दे विच कमाए ने, बाकी जन्मां सिर्फ भुगतान है। कर्म करन दा जो मौका है, कमाई करन दा, वह सिर्फ इंसानी जन्म दे विच है। हुण इंसानी जन्म दे विच उसने जो भी कमाई करनी है, उसका भुगतान किसी एक जन्म दे विच, किसी एक लोक दे विच नहीं हो सकता। असी कई वारी स्वर्गां विखुंडां च गए हाँ, कई वारी इस मृत लोक दे विच आए हाँ, कई वारी सब्जियां दे विच असी जन्म लिया है, कई वारी जानवर और परिंदियां दे विच असी जन्म लिए हन। सुखमनी साहब दे विच गुरु अर्जन देव पातशाह ने पूरी अशपति दिती है, जिदे विच उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस जीवात्मा नू मनुखे जन्म तो आने तो पहले कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म पक्षी पर होयो, कोई पिन भेद नहीं रखिया, कोई छुपा के नहीं रखिया कि इस जन्म दे विच आने तो पहला तू केड़ियां केड़ियां जूनां नू भुगता करके आया है। वह सारे किए गए वखरां दा भुगतान, खेडे गए जुए का भुगतान करन दे बाद तैनू एक मौका दिता है उधार की पूंजी दे करके। जुआरी जदों बिल्कुल ही हार जाता है तो कई बार उसके उपर तरस खा करके उसनू कुछ पूंजी देती जाती है भी तैनू मौका देंदे आ होर जुआ खेड लै, एक दा होर लगा लै, शायद तू जित जावे। पर यह जीवात्मा जो है फिर उसी नंबर से दा लगाती है जिस नंबर से सदा तो हारती आई है, और यह नंबर से फिर हार जाती है और इसनू फिर भुगतान करना पैंदा है। पिछला भुगतान होया नहीं, अगला वधी जा रहा है। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा संचित कर्म इकट्ठा हो जाता है, अनगिनत करोड़ों जन्मां का हिसाब है जिहड़ा ब्रह्म दे विच मौजूद है, जिस दे विचों लैकर के इस जीवात्मा नू जन्म दिता जाता है, जिसनों असी प्रबध जन्म प्रबंध कर्म कहते हैं। इस करके सतगुरु ना तो प्रबध विच मेक मारदे ने ना संचित विच, पर मिटांदे किस तरीके दे नाल हन, जिहड़े लैकर के असी जन्म ले हन इस देह दे उपर भुगतवाउंदे ने। चाहे तुसी हस के भुगतो, चाहे रो करके, वो शरीर नू स्थिर कराउंदे ने, इस जीवात्मा नू, इस दी ताकत नू जिसनू असी ख्याल कहंदे आ, जिहड़ा इस जगत दे विच वस्तुआं और संबंधां दे विच फसिया पिया है, उस दे विचों निकलाण दे विच मदद करदे हन। वो तो पूरा रस्ता देंदे हन, चलना तो जीवात्मा ने है, गाइड का काम है रस्ते का मार्गदर्शन। उन्होंने मार्ग दस दिता, उपाय दस दिता, पिछले सत्संग स्पष्ट किया गया सी, मुट्ठी बंदर ने बंद की है, ना मटकी ने उसनू पकड़िया है, ना दाने ने पकड़िया है। मुट्ठी खोल दवे आजाद हो जाए, ना मुट्ठी खोलता है ना बंधन चो आजाद हुंदा है। वही हालत जीवात्मा की है, मार्ग देखने दे बाद सत्संग दे विच आ गए, मार्ग का पता चल गया, सच्चाई का पता चल गया, फिर भी अगर जीवात्मा जुआ खेडदी है, भैड़ा वखर कमांदी है, तो भुगतान सतगुरु ने थोड़ी करना है। भुगतान इस जीवात्मा ही करना पेगा। तो सतगुरु सानू पहली बारी नहीं मिले, अनगृहित जन्मा का हिसाब है। सवेरे सतगुरु ने स्पष्ट करता कोई भिन्न भेद नहीं, असी बाह छुड़ा के बैठे हैं, किसी अहंकार च ना बैठो। बाह छुट चुकी है, हुण अगर ताकत है अंधा होई के रत्ना परखन जाई, इस बाह नू पकड़ लोगे? किस तरीके नाल पकड़ लवांगे असी? एक कन्ना इस कमरे चो किस तरह निकल जाएगा? सतगुरु ने बाह पकड़ा दी थी, अपने नाल बिठा लिया, अपना चिन्ह देता, अपना रूप देता, उस तो ज्यादा होर क्या चाहिए। पर जीवात्मा ने फिर भी जुआ खेड़िया, प्यो दे कीते गए विश्वास दे उपर विश्वास कात नू कायल किया। प्यो ने मौका दिता, एक मौका, फिर पूंजी दिती, फिर स्कूल दे विच ना लिखा दिता। असी फिर स्कूल जा करके ऐसी किरिया अपना ली कि हेडमास्टर ने ना ही कटता। ठीक ही उदाहरण है इस जगत दे विच, असी कई बारी नाम लिया, कई बारी मास्टर ने सानू दाखिल कराया, पिता ने पूंजी दिती, सतगुरु ने, असी फिर जुआ खेड लिया, वही किरिया अपना ली। केड़ी किरिया? जगत दिया वस्तुआं और संबंधां नू इकट्ठा करन लग गए, और अखीर मजबूर हो करके मैनेजमेंट कमेटी आलिया ने इस लोक दे विच चल रहे समय दे विच बाह छुड़ाण दा भाव है कि साडा फिर ना कटता। असी आखिरी स्टेज ते मौजूद हाँ, किस वक्त परले आ जानी है कोई नहीं जानता। सांसा की पूंजी पता नहीं हुणे बैठे बैठे ही खत्म हो जाए, अंदर दा गया सवाह बाहर ही ना आवे, फिर कैड़ा अहंकार लैकर के बैठे हाँ, केड़े सतगुरु की गल कर रहे हैं असी? बाह छुड़ाण दे बाद किसने स्कूल दे नज़दीक भी जान देना? क्लास च बैठन की तो गल ही दूर है, अगली क्लास च कौन चढ़ा देगा? असी अख बंद करके अगली क्लास ही चढ़ना चाहते हैं विश्वासघात करके। अज अगर 60 साल के 70 साल के हो चुके हैं, 50 साल के हो चुके हैं, 40 के हो चुके हैं, 40 साल 50 साल 80 साल कमाया की असी? वस्तुआ और संबंध कभी उस स्कूल की किरिया नू अपनाया? कभी मास्टर दे दिते होमवर्क नू कीता? घर आंदे ही वस्ता वगा के मारिया, बैट बाल ले खेडन चले गए। बैट बाला केड़िया ने? ये दोते पोते, इन्हां नू मोढ़े से चुके बाहर निकल गए। वो पूंजी खर्च कर रहे हैं जड़ी रतन नू प्राप्त करन वास्ते मिली सी। और सत्संग जी फ्री च रतन तो कोई दिंदा नहीं। इस जगत दे विच कोई छोटी जी 2 रुपए की वस्तु कोई फ्री च नहीं दिंदा, और जिसनू असी गिफ्ट कहंदे आ ना वह भुगतान देना पैंदा। अगर 10 रुपए की गिफ्ट कोई दे गया ना तो कई हजार का भुगतान अगले जन्म ही देना पैना जी, फिर कैसे भ्रम च बैठे हैं कि किसी ने सानू गिफ्ट देती है? और जो भुगतान करन लगांगे ना साढ़े अथरू निकलणगे, और इन आथरों के उत्ते सानू फिर बड़ा अफसोस होंदा। और अजे साढ़े अथरू निकलने ही नहीं शुरू होए, कदों निकलणगे? कदों ये कुंड खाली होणगे? किसी अहंकार च ना रहना, असी बचना नू सही ढंग नाल समझे ही नहीं। ये कंजू सुख जांदे, अखां फट जांदियां, उस दे बाद भी यह रतन की प्राप्ति करोड़ों ही चो किसे युग दे विच किसे विरलिया चो विरले नू प्राप्त होंदी है। उस दे बाद भी असी बाणी का सही अर्थ नहीं जान सके। कोई विरला वडभागी ये सच्चे वखर नू कमांदा है, पर कदों कमांदा है? जदों हुक्म ते कुर्बान हुंदा है, अपने मास्टर की गल नू मंदा है, उस स्कूल दे नियम दे विच आंदा है, जिस स्कूल दे विच इस जन्म दे विच आकर के उसनू दाखला दिता गया। असी उस दे नाम दा मत या धर्म ते बना लैंदे हां, ਪਰ ਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਵਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਏ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋਨਾ ਚ ਵਿਰਲਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਔਰ ਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੌੜ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜੋ ਦੌੜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਹੈ ਕਰਮ, ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਖੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਏ, ਯਾਨੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਖੀ ਦਾ ਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਅਣਗਿਣਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਇਸਨੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਖੁੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਇਸਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਜਨਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਭੇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ।